पृष्ठ संख्या 68। किंतु अंबेडकर के प्रयासों का ही फल था कि 1919 के अधिनियम में प्रथम बार दलित जातियों का अस्तित्व स्वीकार किया गया और गवर्नर जनरल ने 14 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का मनोनयन किया। केंद्रीय धारा सभा के लिए उसमें एक दलित था, उसी तरह प्रांतीय सभाओं में 4 नामांकन सेंट्रल प्रोविंसेज में हुए। यह अंबेडकर की प्रथम जीत कही जा सकती है। 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित हुआ। कांग्रेस पार्टी ने इस आयोग के बहिष्कार का नारा दिया। साथ ही मुस्लिम लीग के जिन्ना गुट ने भी उस आयोग का विरोध किया, किंतु एक गुट ने उसका समर्थन किया। इस आयोग के साथ सहयोग करने के लिए केंद्रीय सरकार और सभी राज्य विधान परिषदों ने अपनी कमेटी मनोनीत की। 3 अगस्त 1928 को डॉक्टर अंबेडकर बंबई प्रदेश काउंसिल की ओर से इस कमीशन का सहयोग करने के लिए मनोनीत हुए। उन्होंने गुस्से में कहा कि हिंदू जमात और दलित समाज का कोई रिश्ता नहीं है, हम लोग एक अलग जमात हैं। उन्होंने धारा सभाओं में एक दो दलित सदस्यों के नामांकन की प्रथा को समाप्त कर इनके अलग से चुनाव कराने की मांग की। डॉक्टर अंबेडकर का गुस्सा प्रतिक्रिया स्वरूप था, क्योंकि फरवरी और मई 1928 के कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर लखनऊ में ऑल पार्टी संविधान सम्मेलन पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। इस सम्मेलन ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र स्वीकार किया। समिति की राय थी कि बालिग मताधिकार होने से दलितों की हालत स्वतः सुधर जाएगी। कांग्रेस के दलितों के प्रति इस तरह के बर्ताव से अंबेडकर का उत्तेजित होना स्वाभाविक था। अंबेडकर को उम्मीद थी कि गांधी ऐसे मौके पर हस्तक्षेप करेंगे और कांग्रेस नेतृत्व को दलितों को राजनैतिक अधिकार दिलाने के लिए हठ करेंगे, किंतु गांधी की चुप्पी ने अंबेडकर को और भी प्रतिक्रिया से भर दिया। उन्होंने साइमन कमीशन के समक्ष कहा कि आबादी का 1/5 हिस्सा अछूत है, वे अछूतों को सताते हैं, ब्राह्मणों का अत्याचार चरम सीमा पर है, वे हमें पशु समझते हैं, कुएं से पानी नहीं निकालने देते, इस नल पर पानी नहीं पी सकते, अतः हमारे लिए धारा सभा में स्थान आरक्षित हो, हमें मंत्रिमंडल में जगह मिले, इनका मंत्री हो, सेना, नौकरी, शिक्षा में भर्ती हो। साइमन ने पूछा, प्रश्न, क्या आदिवासी भी अछूत हैं? उत्तर, हाँ, कुछ भागों में कहा जाता है। प्रश्न, बंबई विधानसभा में इन लोगों के लिए क्या होना चाहिए? उत्तर, इनको हिंदुओं से अलग और अल्पसंख्यक कहना जरूरी है और प्रत्येक को 2 वोट का अधिकार हो, इनकी सीट सुरक्षित हो। प्रश्न, हर युवक को अलग मताधिकार न दिया जाए तो? उत्तर, तो फिर से लोग अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करेंगे। प्रश्न, तुम चाहते हो तो इन्हें सरकारी नौकरी मिले, क्यों? उत्तर, क्योंकि इनके साथ न्याय नहीं होता, उपेक्षा होती है। तब साइमन ने ऐसा करने का वचन दिया। पृष्ठ संख्या 69। ₹1930 में जॉर्ज पंचम ने लंदन में भारत का संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इसमें 89 लोग थे। इनमें से 53 भारत के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, जिनमें प्रमुख गांधी, जिन्ना, सप्रू, चमनलाल, सरदार उज्जवल सिंह, कश्मीर, पटियाला के राजा, बड़ौदा, भोपाल, अलवर, बीकानेर के राजा सहित डॉक्टर अंबेडकर भी शामिल थे। उन्होंने सम्मेलन में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, अंग्रेजी राज में हमारे देश के अछूतों ने कोई तरक्की नहीं की, इसका मुझे खेद है। मैं इसकी शिकायत लेकर आया हूँ। क्या कभी भारत से छुआछूत जाएगा? दलित तालाबों से पानी भर सकेंगे, कुएं पर जा सकेंगे, सेना पुलिस में भर्ती नहीं हो सकेंगे। इनके छूने से नल अपवित्र हो जाता है क्या? मंदिरों में जाने पर रोक क्यों है? इन्हें क्यों सताया जाता है? सम्राट ने कुछ न कुछ करने का वचन दिया। 1930 के लाहौर सम्मेलन में कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रही थी। 1931 में मार्च महीने में लॉर्ड इरविन और गांधी जी में समझौता हुआ। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी हो गई। 23 मार्च 1931 की घटना के तुरंत बाद कराची में कांग्रेस का अधिवेशन था। देश भर के युवक गांधी से, चूंकि सरदार भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी हो गई थी, इसीलिए गांधी इरविन समझौता रद्द करने की मांग कर रहे थे। गांधी ने ऐसा नहीं किया और कांग्रेस के कराची सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधियों को इस बात का आश्वासन दिया कि वे गोलमेज सम्मेलन में पूर्ण स्वराज की पैरवी करने जा रहे हैं। उनका देश को वचन था, रा डॉट टे डॉट का डॉट में पूर्ण स्वराज्य की वकालत, और डॉक्टर अंबेडकर देश के दलितों को उनके अधिकार वापस दिलाने का वचन देकर गए थे। इसीलिए दोनों को तो गोलमेज सम्मेलन में भिड़ना ही था। कांग्रेस ने कराची सम्मेलन में मौलिक अधिकारों संबंधी प्रस्ताव पास कर ही दिया था। गांधी जी की कोशिश थी भारत में जनता के बुनियादी अधिकार बहाल किए जाएं। गांधी लंदन में अंबेडकर पर बरसे, अंबेडकर उनसे मिले। गांधी ने कहा, तुम इन्हें अछूत कहते हो, मैं इन्हें हरिजन कहता हूँ। मैंने इनकी तरक्की के लिए अभी तक 20 लाख खर्च किए हैं। अंबेडकर ने कहा, महात्मा जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप इन्हीं में 20 लाख बांट देते तो भी इनका कोई लाभ नहीं होता। आप भारत से छुआछूत नहीं मिटा पाए, इसका मुझे दुख है। मैंने निश्चय किया है कि दलितों को उनका मानवाधिकार दिलाऊंगा। सिख और मुसलमानों को आरक्षण है तो अछूतों को क्यों नहीं है? गांधी ने इस बात से असहमति जताई क्योंकि कराची कांग्रेस अधिवेशन से अधिकार आदेश और दिशा लेकर गोलमेज सम्मेलन में आए थे। उनकी दिशा थी पूर्ण स्वराज्य और नागरिकों के मूल अधिकार। इसीलिए अंबेडकर से उनकी टकराहट स्वाभाविक थी। 9 जून 1931 को कांग्रेस कार्य समिति की बंबई में आवश्यक बैठक हुई थी। इसमें देश की सामान्य स्थिति पर विचार हुआ था। एक, महात्मा तेंदुलकर, वॉल्यूम 3, कॉमा पृष्ठ संख्या 298। पृष्ठ संख्या 70। यहाँ गांधी जी ने कहा था, जब तक भारत में हिंदू मुसलमान के झगड़ों का प्रश्न हल नहीं कर लिया जाता, तब तक लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का कोई औचित्य नहीं है। यदि सम्मेलन के प्रारंभिक दौर में ही हिंदू मुस्लिम समस्या गंभीर हो जाएगी, तो वास्तविक जो राजनैतिक और आर्थिक प्रश्न हैं, वे चर्चित नहीं हो सकेंगे। किंतु कार्य समिति ने फैसला किया कि सभी परिस्थितियां अनुकूल हैं। गांधी को गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। गांधी जी ने यंग इंडिया में 18 जून 1931 को एक लेख लिखकर अपना पक्ष बतलाया कि मैंने कांग्रेस कमेटी को कहा है हमें गोलमेज सम्मेलन में जाकर ऊपर से स्वराज्य का नक्शा लेकर चले आने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस को देश के सभी वर्गों का उसी तरह प्रिय पात्र बनना है जैसा कि यह हिंदुओं में प्रिय है। हमें गोलमेज सम्मेलन का तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक इस देश के सभी वर्ग एक राष्ट्रीय समाधान के लिए सहमत नहीं हो जाते। यह निर्भर करता है कि हम पूर्ण स्वराज्य का अर्थ क्या लगाते हैं। पूर्ण एकता, अंदर और बाहरी आक्रमण से मुक्ति, इसे हम स्वराज्य का अर्थ समझते हैं। इसे वयस्क, मताधिकार और सत्याग्रह दोनों से प्राप्त किया जा सकता है। कांग्रेस को करोड़ों भूखी नंगी जनता का प्रतिनिधित्व करना होगा और उनके लिए लड़ना होगा। कांग्रेस तत्व चाहती है, छाया नहीं। इसीलिए यह शक्ति सत्ता की छाया के लिए इंतजार नहीं करेगी। यह सत्ता के मूल के इंतजार में भी नहीं रहेगी, जिसकी प्रतीक्षा और अपेक्षा इस देश का करोड़ों भूखा और नंगा व्यक्ति कर रहा है। 8 अगस्त 1931 को गांधी ने वक्तव्य में कहा कि बिना पूर्व तैयारी के गोलमेज सम्मेलन में जाना व्यर्थ है। मेरा वहां जाना व्यर्थ है। यदि हिंदू मुसलमान सिख झगड़ों का निपटारा नहीं होता, यह तो कांग्रेस कार्य समिति का फैसला है कि इस समस्या का पूर्व समाधान होने से पूर्व भी मुझे जाना है। लेकिन मैं वहां केवल हिंदू बनकर नहीं जाना चाहता। यदि मैं वहां जाकर केवल हिंदू हूँ तो मुझे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं करना है। यदि मुझे वहां कम ताकत और कम आत्मविश्वास के साथ जाना है, तब भी यह एक कदम लंदन की ओर होगा। 29 अगस्त 1931 को बंबई बंदरगाह से गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने हेतु राजपुताना जहाज से गांधी चले। इनके साथ पंडित मदन मोहन मालवीय, श्रीमती सरोजिनी नायडू, प्रभा शंकर पट्टानी, महादेव देसाई, प्यारे लाल देवदास, मीराबेन और जी डी बिड़ला थे। पूर्व योजना के अनुसार डॉक्टर अंसारी को भी जाना था, लेकिन उन्हें वायसराय ने अनुमति नहीं दी। वहां जाते समय गांधी ने कहा, ईश्वर अकेले मेरे दिशा निर्देशक हैं। वातावरण गहन अंधकार का है। मुझे खाली हाथ आने की पूर्व संभावना है, किंतु भगवान भरोसे चल रहा हूँ। कुछ न कुछ भारत के भाग्य संवारने की दृष्टि से अच्छा ही होगा। अक्टूबर 1931 के अंत में ब्रिटेन में चुनाव हुए। राम से मैकडोनाल्ड को प्रधानमंत्री मानकर 5 नवंबर को एक राष्ट्रीय सरकार ब्रिटेन में बनी। सप्रू सहित तमाम भारत के प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन की नई सरकार से भारत के भावी संविधान और सरकार के बारे में अपना निर्णय शीघ्र घोषित करने की मांग की। एक, महात्मा तेंदुलकर, वॉल्यूम 3, पृष्ठ संख्या 99। 2, वही कॉमा पृष्ठ संख्या 103। पृष्ठ संख्या 71। गोलमेज सम्मेलन का मुख्य काम फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी और माइनॉरिटी कमेटी कर रही थी। गांधी जी दोनों के सदस्य थे। सांप्रदायिक पहल तमाम कोशिशों के बावजूद किसी निर्णायक बिंदु पर नहीं पहुंची। माइनॉरिटी कमेटी की बैठकें लगातार स्थगित होती थीं। अंदर बातें तो होती थीं, किंतु निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता था। डॉक्टर अंबेडकर लगातार अछूत जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग करते थे। सिखों को छोड़कर सभी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि उनकी मांग का समर्थन करते थे। अंत में कमेटी के सामने भाषण करते हुए अंबेडकर ने कहा, अछूत जातियां इच्छुक नहीं हैं, वे बार बार जोर नहीं दे रही हैं, न तो वे कोई आंदोलन खड़ा कर रही हैं कि ब्रिटिश हुकूमत तत्काल सत्ता का हस्तांतरण कर भारतीय लोगों को सत्ता सौंप दे। सिख और मुस्लिम प्रतिनिधि कहते थे, जब तक अल्पसंख्यकों का प्रश्न हल नहीं हो जाता, वे किसी समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे। 13 नवंबर को मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन में भाषण करते हुए आधिकारिक तौर पर अल्पसंख्यक गुटों के आपसी एकता को आशीर्वाद दिया तथा दलित वर्गों द्वारा पृथक मताधिकार की मांग का समर्थन किया। गांधी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस पार्टी अनगिनत वर्षों तक बियाबान में घूम सकती है, लेकिन ऐसे किसी समझौते को स्वीकार नहीं कर सकती जिस पेड़ की साया में आज़ादी का पौधा कभी नहीं उगे। अपने उपसंहारात्मक भाषण में गांधी ने कहा, अन्य अल्पसंख्यकों द्वारा अपने हक में उठाई गई मांग का अर्थ मेरी समझ में आता है, किंतु अछूतों के नाम पर उठाई गई मांग मेरी समझ से परे है। इसका अर्थ है लगातार खतरनाक धार पर चलना। भारत की आज़ादी की जंग जीतने के बहाने अछूतों के अधिकारों के साथ सौदा नहीं किया जा सकता। मैं अपने को भारत के अछूत बहुल वर्ग का प्रतिनिधि घोषित करने का दावा करता हूँ। यदि भारत के अछूतों में जनमत संग्रह किया जाए तो मुझे उनका सर्वाधिक वोट मिलेगा और अछूत नेतृत्व में मैं प्रथम रहूँगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे रजिस्टर में अछूतों का नाम अलग वर्ग के रूप में दर्ज हो। सिख, मुस्लिम, यूरोपीय का नाम तो अलग वर्ग के रूप में दर्ज हो सकता है। मुझे हिंदुत्व की मौत स्वीकार्य हो सकती है यदि इस धर्म में छुआछूत की पद्धति जिंदा रहती है। मैं उनके हितों का बलिदान संपूर्ण विश्व का राज्य प्राप्त होने की शर्त पर भी नहीं कर सकता। वे लोग जो अछूतों के अधिकार के नाम पर भाषण कर रहे हैं, वे भारत को नहीं जानते। वे नहीं जानते कि आज के भारतीय समाज का गठन किस प्रकार से हुआ है। इसीलिए मुझ में जितनी भी शक्ति है, उस पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कह रहा हूँ कि यदि ऐसी चीज का विरोध करने के लिए मैं अकेला व्यक्ति बचता हूँ, तो भी इसका विरोध अपने जीवन की बाजी लगाकर भी करूँगा। 28 नवंबर को विदाई सभा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने माइनॉरिटी कमेटी की तथा फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट रखी। उन्होंने नोट में कहा, अभी सरकार ने इन रिपोर्टों को स्वीकार नहीं किया है। सम्मेलन के समापन समारोह में गांधी ने 70 मिनट तक आधी रात को भाषण दिया और लोगों का कथन है कि वह उनके स्मरणीय भाषण में से एक है। एक, महात्मा तेंदुलकर Vol. 3, पृष्ठ संख्या 128। दो, वही, पृष्ठ संख्या 129। पृष्ठ संख्या 72। गोलमेज सम्मेलन की बैठकें 3 महीने में 3 बार हुई। सभी बैठकों में गांधी अंबेडकर की झड़प बड़ी रोचक है। अंबेडकर ने 4 करोड़ 30 लाख दलितों की दशा का मार्मिक पक्ष ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा। उन्होंने कहा, अछूत मुसलमानों से अलग हिंदुओं के ही एक अंग कहे जाते हैं। यहाँ तक कि गुलाम प्रजा और राजा में भी शारीरिक संबंध है, लेकिन अछूत अलग है। उन्होंने प्लेनरी सेशन की 5वीं बैठक में 20 नवंबर 1931 को कहा, भारत के अछूत फ्रांस और ब्रिटेन की आबादी के बराबर हैं। वे अस्तित्व का संकट झेल रहे हैं। उन्होंने दलितों की ओर से मांग की कि भारत में अफसरशाही आधारित सरकार की जगह जनता की, जनता द्वारा जनता के लिए सरकार गठित हो। दलितों ने भारत में अंग्रेजी राज को युगों से अंधविश्वासी हिंदू जुल्म दमनकर्ताओं से मुक्ति दिलाने का आधार माना है। उन्होंने सिख, मुसलमान और हिंदुओं से लड़ाई लड़ी है और भारत के साम्राज्य को जीता है। ब्रिटिश भारतीय दलितों के हितों के संरक्षक हैं। अंग्रेजों के आने से पूर्व हम बहुत खराब हालत में थे। हम सभी अवसर से वंचित थे। अब कुछ गुंजाइश पैदा हुई है, लेकिन हमारी हालत में कोई अंतर नहीं आया है। 150 वर्षों के ब्रिटिश राज में सब कुछ ठीक नहीं हो सका है। जैसे चीन का दर्जी पुराने कोट में पैबंद लगाकर ठीक करता है, वैसे ही आपने किया है। हम सवर्णों से दया और कृपा की भीख नहीं मांगते। वे हमारी समस्या का समाधान करने में विफल हैं। ब्रिटिश सरकार पर दोहरा दबाव है। एक भारत पर राज करने वाले महाप्रभुओं का तथा दूसरा बाहरी दबाव। भारत की अफसरशाही प्रधान सरकार हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। जब तक हम अपने हाथ में राजनैतिक सत्ता नहीं लेंगे, सत्ता की नई मिशनरी तैयार करते समय भारतीय समाज की बनावट को ध्यान में रखना होगा। अन्यथा जो भी संविधान आप बना कर देंगे, उसे भारतीय समाज चाट जाएगा। अछूत समाज की समस्या सामाजिक है, उसका हल भी राजनैतिक समाधान के अतिरिक्त होगा। इन वर्गों का भाग्य तब तक नहीं सँवरने वाला है जब तक उनके हाथ में राजसत्ता नहीं आती। ब्रिटिश शासन ने भी कुछ लोगों के ही हाथ में आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक सत्ता दे दी है। दलितों ने काफी इंतजार किया। जब जब ब्रिटिश सरकार ने किसी प्रातिनिधिक सरकार की बात कही, उसमें दलित छूटते गए। भविष्य के शासकों की सद्भावना के भरोसे हमारी समस्याएं न छोड़ी जाएं। हमारे हाथों में शक्ति दी जाए। राजनैतिक सत्ता की मशीन से हम अपने भाग्य को संवार लेंगे। धारा सभा सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली है तथा जवाबदेह हो। हम सरकार के दमन से दलित हिंदुओं का सताए हुए मुसलमानों द्वारा उपेक्षित, हम असहाय अवस्था में अति असहाय अवस्था को प्राप्त हैं। इसके प्रति ध्यान आकृष्ट कराना मेरा फर्ज है। अक्टूबर माह की 1वीं बैठक में अंबेडकर ने अछूतों को अलग वर्ग मानकर धारा सभाओं में उनके प्रतिनिधित्व की मांग की है। इस बिंदु पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल विभाजित हो गया था। गांधी जी ने सावधानी की बात कही थी। गांधी जी ने सुझाव दिया था कि बैठक स्थगित कर सभी पक्षों की एक कमेटी बनाकर सम्मिलित फॉर्मूला बनाया जाए। अंबेडकर ने कहा, क्या ऐसी कमेटी में काम करना संभव होगा? प्रथम दिन ही गांधी ने अंबेडकर से कहा था कि फेडरल कमेटी में वे मुसलमान और सिख के अलावा किसी अन्य वर्ग को मान्यता नहीं देते। वे फिर कह रहे हैं कि इस विचार पर वे आरूढ़ हैं। इस पर गांधी ने कहा, भारतीय समाज का कोई हिस्सा प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं होगा, सभी के साथ न्याय होगा।